الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم انتظام خانہ یعنی ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اپنے حضرت کے سلسلہ دروس مثال امور خانہ داری میں حسن انتظام میں سے. تو اس میں جو کلیننگ والا ٹاپک شروع ہو گیا تھا تو اس میں یعنی گھر کی صفائی گھر کی کلیننگ, تو اس میں ہم نے کچن کی صفائی کے بارے میں پڑھ لیا, ٹیبل وغیرہ کی صفائی, کارپیٹ کی صفائی, بیڈ روم کی صفائی, ڈریسر کی صفائی, باتھ روم کی صفائی, یہ بھی پڑھ لیا تھا آخری کلاس میں. اور اس کے بعد پھر روم فریشنر کا استعمال. تو باتھ روم کی صفائی میں بہت ساری باتیں ہوئی تھیں پچھلی کلاس میں. ڈسٹ بن ود اے لڈ, یہ باتھ روم کی انتہائی اہم ضروری ضرورت ہے کہ ایسا کوئی یعنی ڈسٹ بن ہونا چاہیے, ٹریش کین چھوٹا سا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر ڈھکن بھی ہو, تاکہ کوئی بدبودار چیز اگر اندر پھینکی جائے تو اس کی بدبو جو ہے وہ باتھ روم کے اندر پھیلتی نہ رہے. اور وائپر, یہ ایک دوسری انتہائی اہم ضرورت باتھ روم کے اندر کے فرش کے اوپر.
بابا نے کھلا چلی اللہ اللہ پڑھا دے نا اللہ.
ٹھیک ہے, تو وائپر کا ہونا جو ہے یہ دوسری اہم ترین ضرورت ہے باتھ روم کی. اور تیسری اہم ضرورت کیا تھی, یہ ٹیشو پیپر رول کا ہونا. تو یہ کم از کم جو ہے نا وہ ہر باتھ روم میں ہونا چاہیے, یہ تین چیزیں ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ تولیہ, یہ تو عمومی طور پر لوگ رکھ ہی لیتے ہیں. تولیہ بھی اگر نہ ہو تو اس سے بھی بڑی جو ہے وہ باتھ روم استعمال کرنے والوں کو کوفت ہوتی ہے, اسپیشلی اگر باتھ روم کے اندر ہی واش بیسن بھی ہو وضو وغیرہ کرنے کے لیے, یا اور تولیہ نہ ہو تو پھر اس سے بھی ایک مشکل ہوتی ہے. اور ایک اور بھی چیز ابھی ابھی ذہن میں آئی کہ باتھ روم کے جو دروازے ہوتے ہیں تو ان میں اندر کی سائڈ پر یا کسی اور طریقے سے باتھ روم کے اندر کپڑے ٹانگنے کے ہکس ضرور ہونے چاہیے, کپڑے ٹانگنے کے ہکس. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اگر نہ ہو تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ جب سفر کرتے ہیں اور سفر میں جو ہے وہ کسی ریسٹ ایریا کے واش روم کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر اگر ہک نہ ہو تو پھر کتنی زیادہ جو ہے وہ تکلیف اور کوفت ہوتی ہے. کچھ اللہ کے نیک بندے جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ہکس لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہک لے کے چلتے ہیں اور جہاں باتھ روم میں ان کو ہک نظر نہیں آتے نا تو وہاں پر وہ ہک کو لگا بھی دیتے ہیں. یا یہ کہ ٹیمپرری ہک جو ہیں وہ اب ایسے بھی ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ جو کہ دروازے کے اوپر اس طریقے سے ٹانگ دیے جائیں, دروازے کے اوپر کے ایج کے اوپر, کہ جو کہ پھر وہ کپڑوں کے ہک کا کام دے سکیں. پھر اس کو جو ہے وہ آپ نکلتے ہیں وہاں سے نکال کے اپنے ساتھ بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے باتھ روم کی. پھر اس کے بعد ڈس انفیکٹنٹ گولیاں وغیرہ, فینائل کی گولیاں جن کو کہتے ہیں, یا کلوروکس, ٹوائلٹ بول کلینر, یہ ساری چیزیں بھی باتھ روم کے اندر موجود ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد روم فریشنر کا انتظام کا استعمال, یہ اگلا عنوان ہے کتاب کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ روم فریشنر یعنی ایسے اسپریز, ڈیوڈورنٹ اسپریز, یعنی جو جس کے اندر یعنی خوشبو ہو رہا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے. خوشبو کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ ہمارے وجود کے اندر جا کر کے نا ہمارے دماغ کے اوپر اثر کرتی ہے, اور ہمارا دماغ جو ہے وہ بہتر فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جب آپ اپنے گھر کے اندر دیکھتی ہیں کہ یعنی جب آپ نے خوشبو لگائی ہوتی ہے, یا کسی ایسے شخص کے برابر سے گزرے ہیں کہ جس نے اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگائی بھی ہو, تو ایک اچھا بہتر احساس ہوتا ہے. اس کے برعکس जहां पे बदबू होती है तो वहां पे जो है वो इंसान की फितरत अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई है कि बदबू से जो है ना उसके दिमाग के ऊपर एक मनफी और एक बुरा असर पड़ता है। तो हमारी बनाई हुई फितरत है जो हमारे परवरदिगार ने हमारे अंदर हर एक के अंदर जो है वो रख दी है। इसी वजह से खुशबू का इस्तेमाल जो है वो नबियों की सुन्नत में से है, ठीक है, बल्कि ऐसी सुन्नत जो कि नबियों की फितरत में थी, जैसे कि मिसवाक का इस्तेमाल। मिसवाक भी खुशबू वाली चीज है जो जिससे कि दांतों की बदबू दूर होती है और दांतों में खुशबू आती है। तो ये नबियों के इस्तेमाल में इतनी बाकायदगी के साथ रहती थी गोया कि उनकी फितरत बन गई, ठीक है। उसी तरीके से खुशबू का इस्तेमाल यानी मुंह के बाहर बाकी जो जगह हैं वहां पर खुशबू का इस्तेमाल, मुंह के अंदर की खुशबू तो मिसवाक हो गई। अच्छा, तो रूम फ्रेशनर जो है अपने जौक के होने चाहिए और जिसका कमरा है उसके कमरे में उसी के जौक का रूम फ्रेशनर इस्तेमाल करना चाहिए। तो सवाल पूछा है औरत किस तरह की खुशबू लगा सकती है, तो औरत की जो खुशबू होती है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि जो के उसके बदन से बाहर बराबर में गुजरने वाले को ना आती हो। तो इस वजह से उसको कहते हैं कि वो जो रंग वाली खुशबू होती है, ठीक है, तो उसका जो है ना वो असर बाहर नहीं निकलता। यानी ऐसा नहीं होता कि आप सड़क पे जा रही हैं और बराबर वाले को जो है वो आपके लगाई हुई खुशबू आ रही हो, लेकिन बदन की जो बदबू होती है वो फिर भी उससे दूर हो जाती है। औरत को ऐसी खुशबू जो है वो लगानी चाहिए। फिर उसके ऊपर जो है वो जो औरत लिबास पहनती है, फिर उसके ऊपर जो है वो अबाया वगैरह पहनती है, तो उससे भी जो है ना वो खुशबू फिर बाहर निकलने से रुक जाती है। उसके ऊपर खुशबू नहीं लगानी है, ठीक है, यानी अबाया के ऊपर जो खुशबू लगाएंगे ना अगर, तो फिर उसका जो असर जो है वो फिर दूसरों को भी आएगा। और ये बहुत ज्यादा यानी खुशबू में जैसे अभी बात हुई कि दुल्हन को जो है एक फरहत मिलती है, उसी तरीके से दूसरे की खुशबू सूंघ करके जो है ना वो इंसान उस शख्स की तरफ भी अट्रैक्ट होता है, ठीक है, दूसरे की खुशबू, दूसरे के बदन पे जिंदगी भी खुशबू होती है। तो अगर औरत इस तरीके से लगा के कहीं से गुजरती है ना तो ये तो बहुत ही ज्यादा बेहयाई और बेपर्दगी वाली बात होती है। इसी वजह से काफिर और शयातीन जो है उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से औरत की बेहयाई में जो है ना वो ऐड ऐड किया जाए, उसको जो है वो बढ़ाया जाए। तो इस वजह से एक से एक जो है वो ऐसे परफ्यूम जो है वो मार्केट के अंदर हर वक्त आते रहते हैं कि जिनका के सूंघने वाले के दिमाग के ऊपर ऐसा ऐसा असर हो कि बस जो के गुनाह ही की तरफ लेकर के उसको जाए। तो रूम फ्रेशनर अपने जौक के होने चाहिए, यानी जिसका कमरा उसका जौक उसका रूम फ्रेशनर, ठीक है, तो उसके कमरे में उसी के जौक का रूम फ्रेशनर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें जो है वो किसी दूसरे के ऊपर अपनी पसंद जो है ना वो इम्पोज नहीं करने चाहिए, खुसूसन जो सास हैं वो बहू के ऊपर जो है ना वो कि नहीं बस मेरे घर में मेरे बेटे का घर है या मेरा घर है मेरे शोहर का घर है, तो अब उसके हर कमरे के अंदर जो है ना वो मेरी पसंद की खुशबू होगी। तो अब बहू का जो कमरा है तो उसके अंदर भी अपनी पसंद की खुशबू जो है वो लगाने का हुक्म फरमा रही है, तो ये नाजायज इस्तेमाल है आपके इख्तियारात का, आप ऐसा नहीं कर सकती और आपको नहीं करना चाहिए। खास तौर पर जब खाविंद के आने का वक्त हो, तो जब पता चले कि खाविंद दरवाजा बजा रहा है यानी नॉक कर रहा है, उम्मीद है कि वो जोर जोर से पकड़ के उसको नहीं बजाता होगा बल्कि नॉक करता होगा, या ये कि बेल बजाता होगा, दरवाजा बजाने का मतलब बेल बजाना ही है। तो उसके कमरे में जिस फ्रेशनर को वो पसंद करता है छिड़क दें, ठीक है, यानी उसको स्प्रे कर दें या उसको जो है वो छिड़कने का इंतजाम छिड़क दें ताकि वो कमरे में दाखिल हो तो उसकी तबीयत निहाल हो, ठीक है, यानी तबीयत निहाल होने की चीजों में से एक बहुत अहम चीज खुशबू है। उसके अलावा भी होती है, ऐसा नहीं कि खुशबू लगाया हुआ है मतलब लगाई हुई है खुशबू लेकिन जो है वो जुबान जो है वो बड़ी कंची की तरह से चली चली जा रही है और कंप्लेन पे कंप्लेन करी चली जा रही है, तो फिर तबीयत निहाल नहीं होती। खाली खुशबू से तबीयत निहाल नहीं होती, उसके लिए और चीजों का भी इंतजाम साथ साथ करना पड़ता है। अच्छा, तो इसी तरीके से एक और भी सजेशन या रिकमेंडेशन होती है कि घर के अंदर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, हाउस प्लांट्स या इंडोर प्लांट्स जिनको कहते हैं, जिनमें सबसे सस्ता और सबसे आसान जो है वो हमारे यहाँ मनी प्लांट ही होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो प्लांट्स घर के अंदर रखे जाते हैं ना, तो उनसे भी घर की जो फिजा होती है तो वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो जो हाउस प्लांट्स होते हैं उससे घर की एयर क्वालिटी जो होती है ना वो बेहतर होती है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अंदर इनहेल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो एक्सहेल कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं, और हमें जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो घर के अंदर प्लांट से जो है वो काफी ज्यादा जो है ना वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, देखने में भी बहुत ज्यादा, उसकी जो ग्रीन कलर होता है या अगर कोई उसके अंदर और किस्म के कलर्स हों तो नजरों को भी जो है ना वो बहुत ज्यादा भाता है ये कलर, ये प्लांट्स का कलर। ग्रीनरी जो है ना ये इंसान की नफ्सियात के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट करती है। तो हाउस प्लांट्स वगैरह कभी जितना मुमकिन हो सके, जितना आसानी के साथ आप हैंडल कर सकें, तो उनका भी घर के अंदर इंतजाम गोया के रूम फ्रेशनर के इंतजाम में ही या रूम फ्रेशनर के इस्तेमाल में ही आएगा, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल हो गया और ये जो है वो नेचुरल रूम फ्रेशनर हो गया। अच्छा, जो एयर वेंट्स वगैरह होते हैं कमरे के अंदर स्पेशली, यानी एयर वेंट्स एयर के बाहर निकलने के जो जराए होते हैं, जैसे खिड़कियां हैं, तो उस पर पीछे भी बात हो चुकी थी कि अगरचे के डस्ट को अंदर आने से रोकने के लिए खिड़कियां बंद रखनी, लेकिन वंस इन अ वाइल कभी कभी जो है वो खिड़कियों को खोल करके वेंट का इंतजाम भी करना चाहिए, वरना तो इवन जरासीम भी जो है ना वो घर के अंदर फिर बहुत ज्यादा पनपना शुरू हो जाते हैं। बाकायदा डॉक्टर्स ये मशवरा देते हैं कि खिड़कियों को खोल करके रखो, लेकिन अब हर वक्त खोल के नहीं रखो, वरना जो है वो स्पेशली रियाज जैसी जगह के अंदर तो सैंड स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म्स, और इवन कराची वगैरह जैसी जगह में भी जो है वो गाड़ियों का जो धुआं होता है, बे इंतहा धुआं जो मौजूद होता है, तो वो धुआं भी आपके घर के अंदर आ रहा होता है और कालिख जो होती है वो घर के हर चीज के ऊपर जम रही होती है। तो खिड़कियों का इस्तेमाल जो है ये भी फिर इस तरह से जजमेंट करके ही करना चाहिए, खोल बंद का। और एसी वगैरह के जो के अपने फिर उसके अंदर फिल्टर्स होते हैं, हर एसी के अंदर चाहे वो स्प्लिट एसी हो चाहे वो वॉल एसी हो, उनके अंदर जो है वो जालियां लगी हुई होती हैं जो कि रिमूवेबल होती हैं, यानी उन जालियों को आप बाकायदा निकाल करके शावर से उनको धो सकते हैं। तो वो जालियां जो होती हैं ना वो इस तरह की, यानी जो जो एसी जो है वो बाहर से एयर को सक कर रहा होता है कमरे में डालने के लिए, तो उस एयर को वो फिल्टर करता है इन जालियों के जरिए से। तो जाहिर है कि बाहर से जो एयर आ रही थी तो उसके अंदर कितनी डस्ट और सैंड वगैरह होती है, तो वो सारी डस्ट और सैंड जो होती है वो इन फिल्टर जालियों के अंदर रुक जाती है, तो इस वजह से ये जालियां जो होती हैं वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, और जब ये गंदी होती है तो फिर इनका असर, यानी जो एसी का जो असर होता है ना वो बहुत ज्यादा मुतासर होता है कि भाई वो ठंडी हवा जो है वो नहीं कमरे में पहुंचा पाता है। तो इन जालियों को निकाल निकाल करके वॉश करना होता है, ठीक है। जो ऊपर लगे हुए एसी एसी स्प्रेड्स होते हैं तो उन पे किसी स्टूल या सीढ़ी वगैरह से चढ़ करके फिर उनको उतारना पड़ता है, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर कहते हैं कि आउट कंट्री के लोगों में, आउट ऑफ द कंट्री के लोगों में जो डिप्रेशन ज्यादा होता है वो इस वजह से कि वो विंडोज वगैरह ओपन नहीं करते, ऑक्सीजन अंदर नहीं आती, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाती। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है कि डिप्रेशन, तो डिप्रेशन की खैर और भी बहुत सारी, यानी ये सारी चीजें जो होती है ना ये एक पैकेज होती है, ये खाली वन वे या वन डायमेंशनल चीजें नहीं होती हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो प्ले कर रही होती हैं। तो यस, डेफिनेटली चंद चीजें मिल करके एक पैकेज बनती है ना, तो अब हर इंडिविजुअल चीज की अपनी एक वेटेज होती है उस पैकेज के अंदर। जैसे आपने एक पैकेज बनाया, किसी दोस्त को जो है वो गिफ्ट भेज रही है, तो उसमें आपने थोड़े से जो है वो कोई परफ्यूम रख दिया, थोड़ा सा आपने उस पैकेज के अंदर कोई और कोई ज्वेलरी रख दी, उस पैकेज के अंदर आपने कोई खाने की चीज रख दी, उस पैकेज के अंदर आपने कोई फ्रूट वगैरह रख दिया। अब ये आपने एक पैकेज बनाया ना अपने दोस्त को भेजने के लिए, ठीक है। तो अब उस पैकेज के अंदर हर चीज का अपना अपना वजन है, राइट। ज्वेलरी का अपना वजन है, खाने की चीज का अपना वजन है, और जो है वो परफ्यूम का अपना वजन है, ठीक है। तो उसी तरीके से ना ये जो खुशियां होती हैं और ये जो गम होते हैं, ये भी पैकेज होते हैं, ठीक है। ये भी पूरे के पूरे पैकेज होते हैं, और इनके अंदर इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स के अपने अपने वजन होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने डिप्रेशन का एक नाम लिया ना, तो डिप्रेशन एक पैकेज है। इसके अंदर जो है वो खिड़कियों का खोलना बंद रखना, ये एक कंपोनेंट है इस पैकेज का, और इसका जाहिर अपना एक वजन है, ठीक है। लेकिन बाकी भी तो कंपोनेंट्स होते हैं ना। तो बहरहाल कपड़ों की सफाई, तो अगली चीज है कपड़ों की सफाई, के हर दिन में लॉन्ड्री का एक फुल यानी पूरा लोड जरूर करना चाहिए हर दिन में। तो माशाल्लाह जहां पे मासियां आती हैं, तो मासियों का एक जो है वो रोजाना के करने का काम कपड़े धोना होता है, ठीक है। बचपन से हमने पाकिस्तान में देखा, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों के घरों में मासी ने आकर रोजाना कपड़े धोने होते हैं। तो अब जो है वो बहुत सी जगहों पे मासी जो है वो रिप्लेस हो गई है वॉशिंग मशीन से, ठीक है। हमारे बचपन से ही रिप्लेस होनी शुरू हो गई थी, तो अब तो खैर मिलती ही नहीं है बाहर के मुल्कों में। तो फिर वो ऐसी जो है वो फिर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रिसोर्स होती है, तो अक्सर लोग तो रखते ही नहीं है, तो फिर वॉशिंग मशीन से ही काम चलाना होता है। तो अब वॉशिंग मशीन को लोड करना, इसके अंदर फिर कपड़ों को लोड करना होता है। तो फरमा रहे हैं कि हर दिन में एक लोड जरूर करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हजरत ने फरमा दिया तो अब रोजाना जो है ना वो चार कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, ठीक है। कि भाई हजरत ने कहा था, है ना। तो अब हजरत पिछली एक क्लास में भी बात हुई थी ना कि हजरत को यानी डायनासोर बना करके घर वालों के सामने पेश कर दिया, ठीक है ना। इस तरह भी माशाल्लाह आप लोग, हो सकता है कुछ लोग समझ रहे हो कि नहीं, इतना बेवकूफ कौन होगा, ठीक है, कि हजरत ने कह दिया तो अब जो है वो दो कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन रोजाना चल रही है। लेकिन आप यकीन करें ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे हैं, अनफॉर्चुनेटली काफी लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। तो कमी नहीं है इस किस्म के लोगों में जो ऐसी हरकतें करते हैं, और सारा मलबा जो है ना फिर हजरत पे डाल देते हैं, ठीक है ना, ताकि सारी दुनिया जो है वो हजरत बेजार हो जाए और हजरत से जो है वो नफरत करना शुरू हो जाए। ऐसे तमाशे बहुत होते रहते हैं भाई, हम क्या बताएं हम आपको, हमें तो फेस करना पड़ता है ना इन चीजों को। तो खैर हर दिन का मतलब हर दिन नहीं है, ठीक है। डिपेंड्स, आपका लोड अगर पूरा हो गया है तब वॉशिंग मशीन चलाए, वरना ना चलाए। अब जिस घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो माशाल्लाह पार्क जा रहे हैं और खूब जो है वो उछल कूद कर रहे हैं और खूब जो है वो मिट्टी शिट्टी लगा करके अपने कपड़ों में आ रहे हैं घर में, तो माशाल्लाह 5-6 बच्चों के घर के अंदर फिर हो सकता है रोजाना इतना लोड बन जाए, लेकिन हर घर में ऐसे नहीं बनता, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अकल शरीफ दी है, उसको इस्तेमाल करना है, खाली सारा मसला हजरत पे नहीं डाल देना है, अपनी अकल को भी इस्तेमाल करना है। तो फरमाते हैं कि लॉन्ड्री का एक फुल लोड जरूर करना चाहिए, और ये जो लॉन्ड्री का साइकिल है ये मुकम्मल होता है कपड़ों को वॉश करना, यानी पूरा एक साइकिल होता है ना लॉन्ड्री का। तो ये खाली लोड कर देने से मुकम्मल नहीं हो जाता है साइकिल, बल्कि कपड़ों को वॉश करना, उनको ड्राई करना, उनको फोल्ड करना, और उनको उनकी जगह पर जहां उनको रखना है पहुंचाना, ठीक है। ये है पूरा का पूरा साइकिल। तो सिर्फ धो लेना या उनको मशीन में डाल देना ये काफी नहीं। जब आप सुबह उठें तो उठते ही सबसे पहला काम यही किया करें कि क्लॉथ वॉशर को ऑन कर दिया करें। तो ये क्लॉथ वॉशर से हजरत की मुराद बन गई, वॉशिंग मशीन को ऑन कर दिया करें। क्यों क्यों ऑन कर दिया करें, खैर वो हो गई उस किस्म की वॉशिंग मशीन जिसको पहले से ऑन कर देना होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इस दौरान में आप अपने बाकी काम समेटती रहें और मशीन आपके कपड़ों को धोती रहेगी। मतलब ऑन कर देने का यहाँ पर यही हुआ ना कि मशीन में आपने कपड़े डाल दिए, उसके अंदर डिटर्जेंट्स डाल दिए, ब्लीच वगैरह, अगर व्हाइट कपड़ों का लोड है तो उसको डाल दिया ब्लीच को, और फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन को आपने स्टार्ट कर दिया। अब वो 20 मिनट चलेगी या 40 मिनट चलेगी, जो भी उसका साइकिल का टाइम है, तो उतनी देर में आप कोई और काम करती रहें, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से, अपने घर के हालात के हिसाब से और मामलात के हिसाब से इसको करना चाहिए। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हजरत ने फरमाया था कि सुबह उठते के साथ ही पहला ये काम करें, तो हमने पहला यही काम कर, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ये कोई फर्ज वाजिब के अंदर नहीं है, ये हजरत की खाली एक रिकमेंडेशन में आएगा इफ इट मैचेस योर रूटीन, इफ इट मैचेस योर रूटीन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो असल अहम बात जो है ना वो यहाँ पर ये है, जो कि बड़ी जबरदस्त बात आपने फरमाई है, कि ये पूरा एक साइकिल होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देना इसे लेकर के कपड़ों को तह करके वापस उनकी जगह पे पहुंचा देना, ये पूरा का पूरा साइकिल होता है। अब इसके अंदर जो है वो डिपेंड करता है कि आप अगर अकेली घर के अंदर ये काम करने वाली हैं तो आप ही ने पूरा का पूरा साइकिल मुकम्मल करना है, अगर आपके अलावा बच्चे ऐसे बड़े हो गए हैं तो बच्चों को इस काम के अंदर भी अपने साथ लगाना है। ठीक है, किसी को लोड करने पे लगाते हैं, किसी को जो है वो कपड़े निकाल करके ड्रायर के ऊपर ड्रायर में डालने, या ड्रायर के लिए जो आपने रैक वगैरह करके अंदर अगर रखा हुआ है, फोल्डेबल रैक्स होते हैं, या बालकनी के अंदर जो रस्सियां वगैरह लगाई हुई हैं, तो ये किसी की जिम्मेदारी हो जाए। ठीक है, बालकनी में कपड़े टांगना, हम जब छोटे थे तो हमारे घर में बालकनी वाला सिस्टम होता था, तो ये काम जो है वो अम्मी ने जो है ये हमारे घर में लगाया हुआ था, बालकनी में कपड़े डालना, फिर उसके बाद उनको उतारना जब वो सूख जाए, फिर उनको तह करना। ठीक है, तह करना भी एक अच्छा खासा, अच्छा ये सारे काम जो होते हैं ना, इनमें इंसान के हाथ ज्यादा लगे होते हैं, दिमाग इतना ज्यादा लगने की जरूरत नहीं होती है, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है कि जिसके अंदर आप कुछ अच्छी चीज सुन सकती हैं। ठीक है, कोई इल्मी बात, कोई रिकॉर्डिंग क्लास की, ठीक है, इस दौरान में सुनने का काम किया जा सकता है, अगर कोई और डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं शोर मचा रहे हैं या जो है वो दूसरे काम भी साथ चल रहे हैं, फिर तो आप ये नहीं कर सकते, लेकिन कपड़ों को फोल्ड करना, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालना, बाहर निकालना, ये बेहतरीन वक्त होता है कि जिसके अंदर आप किसी क्लास की रिकॉर्डिंग को सुन सकते। ठीक है, उसको यूज करना चाहिए, मर्दों के लिए बेहतरीन वक्त जो होता है ना क्लासेस की रिकॉर्डिंग सुनने का, वो ड्राइविंग का वक्त होता है। हम तो हर एक को ये मशवरा देते हैं और अपनी मिसाल भी बताते हैं कि ड्राइविंग के दौरान जितना सुन करके इल्म हासिल किया है ना, उतना तो हमने कभी किताब खोल करके इल्म हासिल किया, कभी किताब खोलने का ऐसी मसरूफियात रहती थी, हमेशा ही रही हैं, अभी भी अलहमदुल्ला ऐसी हैं कि किताब खोलने का इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन ड्राइविंग तो समझने जैसे कि वाजिब है ना, कि ड्राइविंग सीट पे बैठे पहले जो है वो सुनने की चीज को सेट किया, उसको ऑन किया और फिर उसके बाद ड्राइविंग शुरू करी। तो इवन अगर कोई चीज कोई जगह 5 मिनट दूर की ड्राइव पर भी है ना, तो वो 5 मिनट के अंदर भी इतना कुछ सुन करके फायदा हो जाता है कि बता नहीं सकते, और लंबी ड्राइविंग में तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसी तरीके से औरत के घर के अंदर भी ऐसे टाइम होते हैं कि जिसके अंदर के वो ऐसे काम कर रही है जिसमें दिमागी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है, उस दौरान वो इन चीजों को सुन सकती है। वॉशिंग मशीन्स में जो डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो आजकल जो मार्केट में मिलते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ठीक है, यानी गाढ़े होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो मकदार है वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि थोड़ी सी मकदार ही जो होती है वो काफी होती है, तो उसमें जो रिकमेंडेड उसके उसके डिब्बे के ऊपर, उसके कार्टन के ऊपर या उसकी जो बॉटल है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, तो उससे ज्यादा तो हरगिज ना डालें, अलबत्ता उससे कम डालने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो वो तो अपनी मार्केटिंग के हिसाब से जितना लिखते हैं ना कि भाई तो अच्छा है जल्दी खत्म हो ताकि लोग हमसे और ज्यादा आकर के खरीदें तो हमारी ज्यादा बिक्री होगी, लेकिन काम जो है ना वो उससे कम में भी चल सकता है, तो इस मकदार को आप मुतय्यन कर लें कि भाई कितना मकदार जो है वो उससे हमारे कपड़े अच्छे धुल जाते हैं। उसी तरह से ये जो डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं या इस किस्म की जो क्लीनिंग लिक्विड्स होते हैं ना, तो इनको फिर फर्श वगैरह की धुलाई वगैरह के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें जो है वो ऐसे जो क्लीनिंग लिक्विड है उनको डायरेक्टली मत डाल दें। ठीक है, क्योंकि वो अगेन वही बात कि बहुत ज्यादा गाढ़े और कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो उनको पानी में मिक्स करके फिर फर्श वगैरह को वॉश करना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड से आप चीजों को साफ करेंगे ना, तो उससे चीजें बल्कि खराब ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि इनकी इनके अंदर एसिडिटी वगैरह भी होती है, एसिड होता है, तो उससे चीजें खराब हो जाती हैं, तो उनको डाइल्यूट करना होता है पहले पानी के अंदर बनाकर। ठीक है, तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए क्लीनिंग प्रोसेसेस के अंदर, डाइल्यूट करके इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करना। हाँ, आपके कपड़े अगर साफ ही नहीं हो रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि नहीं भी मुझे थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, तो फिर ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करें उसको। अच्छा, फिर उसके बाद 10 मिनट का ट्रिप, 10 मिनट का ट्रिप। कहते हैं कि एक बहुत अहम चीज घर की सफाई के बारे में है कि जिस तरह इंसान, माशाल्लाह, जिस तरह इंसान है, हम तो उसमें नहीं आते लेकिन इंसानों की बात कर रहे हैं, कि जिस तरह इंसान अपने दिल की सफाई के सुबह शाम मामूलात करता है, इसी तरह उसको घर की सफाई के लिए भी 10 मिनट ट्रिप लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखें कैसे जो है ना वो बात मौके के मुनासिबत से चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखें यही हजरत है ना पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी, जब ये बातिन की सफाई के ऊपर बात करते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं कि जिस तरह औरत घर की सफाई में इतना वक्त लगाती है, तो उसी तरह से उसको अपने बातिन की सफाई में भी वक्त लगाना चाहिए। ठीक है ना, वहां पे ये तरतीब कि जिस तरह घर की सफाई में वक्त लगाती है, उसी तरह दिल की सफाई में भी वक्त लगाना चाहिए। यहां पे क्या तरतीब, यहां पर घर की सफाई की बात हो रही है, घर की सफाई की तरगीब दी जा रही है। तो अब यहां पर हालांकि कोई करता वरता नहीं है मामूलात के अंदर वक्त लगाना, इल्ला माशाल्लाह कोई आजकल मामूलात में वक्त लगाता होगा, लेकिन फिर भी तरतीब बदल दी कि जिस तरह इंसान अपने दिल की सफाई के लिए सुबह शाम मामूलात करता है, उसी तरह से उसको घर की सफाई के लिए भी 10 मिनट ट्रिप लगाना चाहिए। तो 10 मिनट का मुराकबा आजकल तो वैसे भी हजरत जी खुद ही फरमाते हैं 10-15-20 मिनट का मुराकबा बस, ठीक है, लेकिन वो कर लें, उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। तो 10 मिनट का मुराकबा जिस तरह होता है ना, तो उसी तरीके से 10 मिनट का जो है वो क्लीनिंग ट्रिप। तो फरमाते हैं कि इसको 10 मिनट पिकअप ट्रिप कहते हैं, 10 मिनट्स पिकअप ट्रिप, यानी पिकअप ट्रक चल रही होती है घर के अंदर। तो ये क्या है, फरमाते हैं कि फर्ज करो कि घर के 5 कमरे हैं, तो 2-2 मिनट हर कमरे को दे, और जो चीज डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड यानी जगह से हटी हुई नजर आए, तो उसको वापस अपनी प्लेस पर रखते, डिस्प्लेस्ड है तो उसको प्लेस पर रखते। तो ये गोया के एक पायराना नजर जिसको कहते हैं ना, बर्ड्स आई व्यू, यानी आप घर का दरवाजा, सॉरी, कमरे का दरवाजा खोला, अंदर गई, एक जल्दी से एक नजर डाली, तो चंद चीजें आपको जो है वो जगह से बेजगह नजर आई, उन चीजों को उठा उठा करके जो है वो उनकी जगह पर रख दिया, बाहर निकली दूसरे कमरे में गई। ठीक है, माशाल्लाह आपके घर के अंदर कई कमरे हैं, तो इस तरीके से आपको डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी रूम्स देयर आर आपको उतना टाइम लगाना होगा। तो इस तरीके से चीजों को उनकी प्लेस पर रखते जाएं हर कमरे के अंदर। बच्चों की आदत होती है कि चीजें बिखेर देते हैं, अब बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो बिलाखिर, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, वो बच्चे ही होते हैं, बड़े नहीं होते, तो उन्होंने जो है ना वो चीजों को बिखेर नहीं होता, तो वो अकेले खेलें या उनके अगर कुछ दोस्त आ जाएं मोहल्ले में से या कहीं से, तो वो फिर चीजें बिखर जाती हैं, उनसे अरेंज नहीं होती हैं। तो खाविंद और बड़े बच्चों की भी आदत होती है कि वो भी चीजें बिखेर देते हैं, है ना, मैंने सबसे बड़ा बच्चा तो घर के अंदर खाविंद होता है ना, बहुत सारी बीवियां ये भी कहती हैं सबसे बड़े बच्चे तो आप खुद हैं। ठीक है, तो ऐसी हकीकत है ये, मतलब ऐसे ही होता है, तो आगे तो और भी आएंगी बातें माशाल्लाह, लेकिन तो खाविंद और बड़े बच्चों की भी आदत होती है कि वो भी चीजें बिखेर देते हैं, तो औरत की ये ड्यूटी है कि वो चीजें, जो चीजें बिखरी पड़ी हैं, उनको वापस अपनी जगह पर रख दे। ठीक है, यानी अभी तो हम अपने पॉइंट पर बाद में आएंगे, फिलहाल जो हजरत फरमा रहे हैं हम खाली उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो खाविंद और बड़े बच्चों की भी आदत होती है, वो भी बिखेर देती हैं, तो भाई ये घर वाली जो होती है ना, तो उसकी ड्यूटीज में से एक ड्यूटी ये भी है कि घर को रीऑर्गेनाइज भी या रीसेट भी करता रहे, जो बड़े जो है वो अनसेट करते रहे, तो ये जो है वो रीसेट भी करती रहे, ये रोजाना की एक ड्यूटी है इसकी। हर कमरे में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये 10 मिनट का ट्रिप पूरे घर को ऑर्गेनाइज्ड यानी मुनज्जम कर देता है। लिहाजा दिन की इब्तिदा में भी 10 मिनट का ट्रिप लगाएं और सोने से पहले भी एक 10 मिनट का ट्रिप लगा के हर चीज को उसकी जगह पर रख दें। हर कमरे में जाएं और जो चीजें आप देखती हैं कि जमीन पे पड़ी हैं उनको अपनी जगह पर रखें, ठीक है? तो गोल क्या है कि डिसऑर्गेनाइज जो है ना वो चीजों को ना छोड़ें, डिसप्लेस चीजों को ना छोड़ें, बल्कि उनको वापस जो है वो प्लेस के ऊपर रखती रहें। ये है गोल। अब ये गोल अचीव करने के लिए दिन के इब्तिदा में आप ऐसा कर लें और बिल्कुल जो आखिर है दिन का उसके अंदर भी ऐसा कर लें, तो फिर जो है वो एक तरीका है ये काम को आसान कर लेने का। या दिन के अंदर कोई और टाइम अगर आपने ऐसा रखा हुआ है तो उसमें आप ऐसा करें। बेसिकली ये काम कब होना चाहिए? जब डिस्प्लेसमेंट का काम मुकम्मल हो जाए तो फिर रिप्लेसमेंट का काम शुरू, ठीक है? क्या मतलब? कि जब बच्चे खेल कूद करके फारिग हो जाए ना, तो उस वक्त फिर जरूरत पड़ेगी ना इस काम को करने की, तो उसके बाद ये वाला काम किया जाए। अब रात भर जो है वो चीजें अगर अपनी जगह पे सही पड़ी हुई थी तो अब सुबह को उठ करके आप क्या कर रही हैं, ठीक है? सुबह को तो किसी ने अभी तक चीजें खराब करी ही नहीं है, ठीक है? उसी तरीके से दिन में अगर कोई बच्चा बच्चा नहीं आया, किसी ने जो है खेल कूद नहीं किया, तो जाहिर चीजें जो अपनी जगह पे पड़ी हुई है, तो चीजों को जगह पे रखने का टाइम सबसे, यानी कौन सा टाइम होगा कि जब वो खराब हो गई तो उसके बाद उनको जगह पे रखें। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो जगह से हटी हुई है तो उनको अपनी जगह पे रखें और बच्चों को भी साथ साथ सिखाती रहें, ताकि वो भी हर चीज को अपनी जगह पर रखने की आदत डालें। इस तरह से घर ऑर्गेनाइज्ड मुनज्जम नजर आता है, ठीक है? तो ये बच्चों को सिखाने वाली बात अगरचे का जरूरत आखिर में करी है, लेकिन ये पिछले वाले भी सारे अल्फाज के ऊपर भारी है, ठीक है? ये उनको भी जो है ना वो फिर अकोमोडेट कर लेती है कि भाई जाहिर है जब आप अपने घर में अकेली, अभी बच्चे नहीं हैं या बच्चे जो है वो कहीं गए हुए हैं, तो फिर ये काम तो आपको करना होगा, ठीक है? उस वक्त ये कहना कि नहीं मैं क्यों करूं ये वाला काम, मैं नहीं करूंगी ये वाला काम, ये सही बात नहीं, ठीक है? भाई ये घर जो है ना ये आपकी आपकी कंपनी है, आपकी कॉरपोरेशन है, आपका दफ्तर है, आपका सब कुछ है, ठीक है? तो ये आपने करना है, आप घर वाली हैं, ठीक है? या बड़ा घर है, ज्वाइंट फैमिली है, तो उसके अंदर जो आपका पोर्शन है तो वो आपका घर है, ठीक है? तो अब उसमें ये नहीं कहना है कि जी जी मैं क्यों करूं, ये वही करेंगे आकर के, बाहर से आएंगे तो फिर वो करेंगे, ठीक है? नहीं, आप नहीं करना है, घर के अंदर है आप, ठीक है? तो ये मकसद था ये बात बताने का कि भाई आपने ये काम करना है, दिस इज योर ड्यूटी। लेकिन बच्चे, जब बच्चे दुनिया के अंदर आ जाते हैं, अल्लाह ताला ये नेमत अता फरमाते हैं, तो फिर जब वो बहुत छोटे होते हैं तो उस वक्त वो ये कर तो नहीं सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी आदत जो डालना है, ये भी माँ का काम, उनकी आदत डालना कि चीजों को अपनी जगह पे रखना। शुरू में वो नहीं रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस काबिल होंगे कि थोड़ा बहुत रख देंगे, ज्यादातर जो है वो नहीं रख सकेंगे, लेकिन जब आपकी ये मेहनत चलती रहेगी तो फिर वो ज्यादा रखने के काबिल हो जाएंगे और थोड़ा बहुत जो है वो नहीं रखने के काबिल रहेंगे। बिल आखिर जब उनकी ऐसी एज आएगी कि वो पूरा रखने के काबिल हो सके, वो पूरा भी रख देंगे, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, लेकिन ऐसे करना पड़ता है। अगर आपने इसको छोड़ दिया और कहा कि नहीं जी अभी तो बच्चे हैं, तो फिर उनकी, और आपने उनकी ट्रेनिंग नहीं करी, या बहुत ही नरम मुलायम लहजे में ही करती रही, समझाती तुम्हें रोजाना वाला जो फलसफा होता है, तो ऐसे काम नहीं होता। बल्कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, तो वैसे वैसे उनसे जो है वो काम करवाना होता है, और अगर सीधी तरह नहीं करते तो उनको सख्ती के साथ करवाना होता है, ठीक है? और सख्ती का मतलब क्या होता है, ये बात अनफॉर्चुनेटली आप लोग नहीं सुनती, क्योंकि ये पहली दफा ही आजीज ये बात नहीं कर रहा, और हजरत जी ने भी पहली दफा बात नहीं करी, साल हा साल से जो है वो बातें हो रही हैं, बार बार जो है रिपीट की जाती है। मिसाली औरत के अंदर भी ये बातें रिपीट हुई थी, लेकिन नहीं सुनती, तो अब आपका अपना नुकसान होता है, आपके बच्चों का नुकसान होता है, फिर डांट वांट भी पड़ जाती है, ठीक है? तो भाई बच्चों के साथ सख्ती करनी होती है। सख्ती का मतलब थप्पड़ मारना नहीं होता, सख्ती का मतलब जो है वो कूट देना नहीं होता, बल्कि सख्ती का मतलब ये होता है कि अगर वो नरमी से काम नहीं कर रही हैं तो फिर उनसे जो है वो उनको पनिशमेंट देने का, पहले उनको तंबीह करनी होगी कि अगर आपने अब ये काम नहीं किया ना तो हम आपको पनिशमेंट देंगे, और ऐसे सीरियसली उनको कहना होता है कि वो इसको मजाक ना समझें कि अम्मी तो मजाक कर रही है, बल्कि संजीदगी यानी वो संजीदा लें इस वाली बात को, और अगर उन्होंने फिर भी अपने एक्ट को दुरुस्त नहीं किया तो फिर उनको पनिशमेंट देनी होती है। पनिशमेंट देने का मतलब होता है कि उनको टाइम आउट दे देना। टाइम आउट का मतलब कि उनसे कोई चीज जो कि वो एंजॉय कर रहे थे वो चीज ले लेना, ठीक है, जैसे खेलना एंजॉय कर रहे थे ना तो उनको खेलने से हटा देना और उनको अलग कर देना कि नहीं अब आप नहीं खेलेंगे, इसको टाइम आउट देना कहते हैं, ठीक है। या बाहर जाके खेलते थे तो बाहर जाने का उनका बंद कर देना, नहीं हम आपको नहीं बाहर जाने देंगे, ठीक है, या कोई और ऐसी चीज जिसको वो एंजॉय कर रहे थे तो वो चीज उनसे ले लेंगे, ये पनिशमेंट देने का तरीका होता है। मारपीट करना जो है ये पनिशमेंट देने का तरीका नहीं होता कि बच्चों को मारपीट करना शुरू कर दें, ठीक है, लेकिन ये सख्ती दिखानी पड़ती है, ठीक है, वरना फिर बच्चे बिगड़ते हैं, खराब हो जाते हैं और फिर वो ऐसे ही जो है वो अब्यूज करते रहते हैं, अपनी चीजों को जगह पे नहीं रख रहे हैं और तकलीफ दे रहे हैं घर के अंदर, अपनी बहनों को तकलीफ दे रहे हैं, कल को जो है वो उनकी शादी होगी तो अपनी बीवियों को तकलीफ देंगे, और दफ्तर जाएंगे तो दफ्तर के दूसरे लोगों को तकलीफ देंगे, यानी वो एक तकलीफ का सामान बन जाते हैं बच्चे। लेकिन उसकी वजह यही बनती है कि माँ ने उसकी जो है ना वो तरबियत उस वक्त नहीं करी होती है जिस वक्त उसको करनी थी, ठीक है। तो बच्चों को सिखाएं, लेकिन सिखाने का मतलब जो है ना वो ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस देना नहीं होता, जैसे ये तो हम तो आपकी माँ के थोड़ी हैं ऑनलाइन बैठ करके जो है आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप तो अम्मा है ना, तो अम्मा ने अपने बच्चों को ऐसे नहीं देना जैसे कि बहुत दूर बैठे हुए जो है ना वो कोई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस दे रही है और बस, ठीक है, बल्कि जबरदस्त तरीके से सिखाना है। माँ का रोब जो है वो इंतहाई जरूरी होता है बच्चों को, लड़कियों को भी सिखाना है, लड़कों को भी सिखाना है। अच्छा, टाइम कितना हो गया क्लास में, टाइम खत्म हो रहा है, और किसी ने जो है वो तौबा के कलमात पढ़ने का भी कहा रहा था, तो 1 मिनट बस इस टॉपिक के ऊपर, कोई और पॉइंट रह तो नहीं गया देख करके। बहरहाल बच्चों की तरबियत भी जो है ये अच्छी खासी जो है ना वो अकल मांगती, और वक्त के मुनासिब हाल क्या काम करना है बच्चों की तरबियत के लिए, कितना उनके साथ नरमी करनी है और किस वक्त जो है वो नरमी के बजाय सख्ती करनी, ये जो डिसीशन मेकिंग पावर होती है ना ये बड़ी अहम होती है माँ के लिए, कि कब तक नरमी करनी है और कब जो है वो सख्ती करनी है, और इस सख्ती का जो लेवल है वो कैसे बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, ये चीजें जो है ना ये अकल चाहती हैं, अकल का इस्तेमाल चाहती हैं, तो इनके लिए जो है ना वो लिटरली यानी एज्यूम मत करें कि मेरे पास तो इतनी अकल है, ये एज्यूम ना करें, ये अपने बारे में इतना अच्छा गुमान रखने की कोई जरूरत नहीं, ये ले डूबता है इंसान को अपने बारे में, जो खुशगुमानी होती है ना ये इंसान को हर तरह से ले डूबती है, कभी अपने बारे में खुशगुमान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो क्या मायूस हो जाएं, अपने बारे में खुशगुमान ना हो तो मायूस हो जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं, हाँ बेशक हो जाएं, अगर आप अल्लाह की बंदी नहीं है ना तो फिर आप हो जाएं डिप्रेस्ड, मेरी बला से आप डिप्रेस्ड हो, अगर आप अल्लाह की बंदी नहीं है, ठीक है, यानी कहने का क्या मकसद, कहना क्या चाह रहे हैं फकीर, कि अपने बारे में खुशगुमान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं अपने बारे में खुशगुमान होने, लेकिन काफिर क्या कहता है, अल्लाह का इनकार करने वाला वो क्या कहता है कि नहीं, अपने बारे में खुशगुमान हो, अगर तुम अपने बारे में खुशगुमान नहीं होगी तो तुम डिप्रेशन की मरीज बन जाओगी, तुम जो है वो मायूसी का शिकार हो जाओगी। लेकिन ये कौन कहता है? ये काफिर कहता है, ये इनकारी कहता है, इनकार करने वाला वो ये काम करता है। जो अल्लाह का बंदा होता है ना, जो ईमान वाला होता है, जो ईमान वाली होती है, उसकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। वो अपने बारे में बदगुमान होती है, लेकिन अपने परवरदिगार के बारे में खुशगुमान होती है। काफिर ऐसा नहीं होता ना, काफिर की जिंदगी में तो खुदा है ही नहीं, या अगर खुदा है भी तो अपना एक ढकोसला बनाया हुआ तसव्वुर है उसके जहन के अंदर, खुदा का अपना बनाया हुआ एक तसव्वुर है ना उसका, खुदा का, जो कि ना होने के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि उसने तो अपना एक खुदा का तसव्वुर बनाया हुआ है, उसी के वो पता नहीं क्या समझा हुआ है उसने खुदा को। ठीक है, लेकिन ईमान वाले के दिल में तो खुदा का सही वाला तसव्वुर होता है, जो कि खुदा के रसूल ने बताया। ठीक है, कि खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, और खुदा ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया कि अल्लाह ऐसा है। तो ईमान वाले के जिंदगी में तो खुदा की मौजूदगी हकीकतन होती है, हकीकतन होती है, यानी खुदा इज, अल्लाह रब्बुल इज्जत इज एक्चुअली प्रेजेंट इन हर लाइफ, एक्चुअली प्रेजेंट इन हर लाइफ। तो अब ये जो ईमान वाली होती है ना, ये अपने आप से जब बदगुमान होती है ना, तो भी ये मायूस नहीं हो सकती, ये मायूस नहीं हो सकती, ये डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से बदगुमान होती है, लेकिन अपने परवरदिगार से बदगुमान होती। तो शी हैज ए फॉल बैक, ये अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी का ऐसे ही मुहावरा है, फॉल बैक। ठीक है, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए बैक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप फॉल बैक होकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर रिलाई कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फ्रंट में है हमारे, लेकिन फॉल फ्रंट कोई अंग्रेजी का मुहावरा ही नहीं है, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि शी हैज अ फॉल फ्रंट अपॉन अल्लाह। ठीक है, कहने का मकसद ये कि जब ये अपने आप से बदगुमान होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो है इसकी जिंदगी के अंदर। एक बच्ची ने है, पता नहीं 20-25 साल से दरमियान की कोई उम्र होगी उसकी, अजीब क्लासेस वगैरह लेती नहीं है, बस जो है वो किसी और वजह से जो है ना, वो वंस इन अ वाइल आकर के जो है वो हमसे कोई सवाल पूछना शुरू कर देती है व्हाट्सएप के ऊपर। तो एक दफा इसी तरह से उन्होंने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया, अल्लाह करे क्लास ले रही हूँ और सुन रही हूँ उस वाली बात को, लेकिन वैसे नहीं सुनती मेरा ख्याल है। खैर, एक दफा सवाल करने लगी, ये अल्लाह ताला पता नहीं अल्लाह ताला है, इस तरह से सवाल करती है ना कि अल्लाह ताला है, नजर तो नहीं आता हमें, अल्लाह ताला है हमें नजर तो नहीं आता, मुझे तो नजर नहीं आता। मैंने कहा आपको नहीं आता, मुझे तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? आपको नहीं आता ना, तो भाई आप अपनी आंखों का इलाज करवाएं। इस तरह से खैर बोला नहीं उसको, लेकिन समझाया फिर उसको दूसरे अल्फाज में कि आपको नजर नहीं आता, हमें तो नजर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ताला तो है ना भाई, अल्लाह ताला कैसे नजर नहीं आता? अल्लाह ताला तो हर वक्त नजर आता है, अल्लाह ताला तो हर जगह नजर आता है, अल्लाह ताला तो हर मामले में नजर आता है। ये किस किस्म की जिंदगी है कि जिसमें अल्लाह ही नजर ना आए? ये किस किस्म का ईमान है जिसमें अल्लाह ही नजर ना आए? ये किस किस्म का इस्लाम है जिसमें अल्लाह ही नजर ना आए? अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अपने मशायख से ऐसा इस्लाम नहीं सीखा जिसमें अल्लाह नजर ना आए। ठीक है, तो अपने आप से बदगुमान रहें और अल्लाह से खुशगुमान रहें। परफेक्ट लाइफ यही है, यही है परफेक्ट लाइफ। इस दुनिया में इससे ज्यादा परफेक्ट लाइफ नहीं मिल सकती इस इंसान को, जिसमें वो अपने आप से बदगुमान रहे और अल्लाह से जुड़ा रहे, अल्लाह से खुशगुमानी के साथ जुड़ा रहे, लेकिन अपने आप से बदगुमान। ठीक है, तो बच्चों के मामले में भी है ना, वो इसी तरह है कि उनको जो है वो सिखाते रहना है, सिखाते रहना है। और उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो है ना वो मदद मांगते रहना। ठीक है, तो बात असल में क्या हो रही थी कि ये जो एबिलिटी टू डिसाइड है ना, कि किस वक्त बच्चों के साथ नरमी करनी है, किस वक्त उनके साथ सख्ती करनी है और कितनी ज्यादा सख्ती करनी है, ये हम अपनी अकल पे भरोसा नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल सही सही जो है वो फैसला कर सकें कब सख्ती करनी है, कब नरमी करनी है और कब जो है वो ज्यादा सख्ती करनी है। अकल पे भरोसा नहीं कर सकते, अपने आप पे बदगुमानी रखें कि मैं अपने अकल पे भरोसा नहीं कर सकती, अपने अल्लाह से इसमें हर वक्त मांगती रहे, अल्लाह ताला से हर वक्त मांगती रहे कि ए अल्लाह आप जो है वक्त के मुनासिब हाल सही बात करने की मुझे तौफीक अता फरमा दे, वक्त के मुनासिब हाल यानी किस वक्त मैंने बच्चे पे सख्ती करनी है, किस वक्त मैंने उसके ऊपर नरमी करनी है। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा नहीं करें, अल्लाह पे भरोसा करें। और ये ऐसी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं कि जिसमें अल्लाह की मदद के बगैर हम सही फैसला कर ही नहीं सकते, अल्लाह की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हम सही फैसला कर ही नहीं सकते, इतने क्रिटिकल मामला होते हैं ये। हालांकि बगैर तो बड़ा आसान सा मामला है ना, अपना ही बच्चा है, मारो पीटो या उसको प्यार करो या लाड करो, क्या हो क्या कुछ नहीं होता, कौन क्या कर लेगा, बगैर तो बड़ा आसान सा मामला है, लेकिन नहीं, ये बहुत क्रिटिकल मामला है क्योंकि इसमें जो है ना फिर आपके बच्चे की तरबियत पोशीदा है और उसका इंसान या हैवान बनना, वो इंसान बनेगा या वो हैवान बनेगा इसका फैसला इसके अंदर पोशीदा है। तो ये कोई मामूली बात तो ना हुई ना, तो इंतहाई क्रिटिकल बात हुई। ठीक है, हम जब इसके अंदर गलतियां करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बिगड़ने की एक सूरत क्या होती है कि बच्चे जो कि अल्लाह ताला ने हमसे छोटे बनाए हैं ना, जिनको अल्लाह ताला ने हमारे मातहत बनाया, वो हमारे सर पे सवार हो जाते हैं। ठीक है, छोटा सा बच्चा वो माँ के ऊपर सरदार बन जाता है, जब माँ उसका लाड प्यार जरूरत से ज्यादा करना शुरू हो जाती है तो वो बच्चा छोटा सा होता है, ठिगना सा होता है, लेकिन वो माँ का सरदार बन जाता है। अब माँ उसके इशारों पे नाच रही है, माँ उसकी मर्जी के मुताबिक अपने जिंदगी के मामलात कर रही है, राइट? उसने कह दिया अम्मी आप ये काम नहीं करेंगी, मी नहीं कर रही हूं वाला काम। उस बच्चे ने कह दिया अम्मी आप ये करें, अम्मी वही काम कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये वो इतना छोटा सा बच्चा ये आपका सरदार बन गया है ना, वो आपको अपने इशारों के ऊपर चला रहा है, क्यों हो गया ऐसे, कैसे हो गया ये वाला मौत, कौन था माँ कौन था यहां पे बच्चा, तरतीब उलट गई है, माँ आप थी, बच्चे ने जो है वो आपके इशारे पे चलना था, लेकिन यहां पर आप जो है वो बच्ची बनी हुई है या बच्चा बनी हुई है और बच्चा जो है वो आपको अपने इशारों के ऊपर चला रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तरतीब उलट गई है, कैसे तरतीब उलट गई है, हमने गलत फैसले किए हैं, हमने बात नहीं सुनी है, हमने बात को संजीदगी से नहीं अपनाया है, नहीं सुना है उसको और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश नहीं करी है, बल्कि अपनी अकल के मुताबिक जो है ना, जो अपनी समझ में बात थी उसके मुताबिक जो है वो अपने मामलात को निपटाने की कोशिश करी है, चूंकि आपने तरतीब उल्टी है इस वजह से अल्लाह ने आपकी तरतीब उलट दी। ठीक है, तो ये मामूली बात समझते हैं ना हम, ये मामूली बात नहीं है, बेवकूफी का सवाल नहीं क्या करें, अभी हम छोटे से बच्चे की बात कर रही थी तो जो छोटा सा बच्चा जो है वो शरीयत का हुक्म बताए, उसी बात नहीं क्या करें, शरीयत का हुक्म बच्चे का हुक्म नहीं होता, शरीयत का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। ठीक है, बहरहाल शरीयत का हुक्म तो अल्लाह का हुक्म है ना, बच्चा बताए या बड़ा बताए उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे तो भाई कुछ और बात हो रही है, आप जो है बिल्कुल ही आ करके किसी और टॉपिक पर बात शुरू कर दें। ठीक है, तो चलें ये बात तो करके हम आज की क्लास खत्म कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा है कि उनकी वालदा जो है वो तौबे कलमात की पढ़ने की नीयत से आई भी है, तो इस वजह से तौबे कलमात की आदेश पढ़ा करके फिर उसके बाद क्लास खत्म करेगा, दिल के अंदर बस सच्ची पक्की तौबा की तमाम खवातीन जो है वो नीयत कर लें और उसके साथ से तीन बार पीछे पीछे दोहरा लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. بس یہ کتاب کلمات مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہمارے لیے آسان فرمائے. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.